सवाल यह है कि लफ्ज़ हिदायत के लिए कुरान पाक में क्या एक ही लफ्ज़ है और वो हिदायत है? तो नहीं, कुरान पाक में हिदायत के दाते से तीन लफ्ज़ इस्तेमाल हुए हैं। एक है हुदा, जो हम इस वक्त डिस्कस कर रहे हैं। दूसरा इसी की एक थोड़ी सी मुख्तलिफ शक्ल, जिसको इहतदा कहते हैं, यानी बाब इफ्तियाल में चला जाता है यही लफ्ज़। और तीसरा है रुश्त या राशदा। थोड़ा सा फ़र्क देखिएगा, इहतदा जब होते हैं ना, यानी जब हुदा लफ्ज़ के अंदर ता लग जाती है, तो इसका मानी होता है लुत्फ़ो करम के साथ किसी की रहनुमाई करना, भलाई का रास्ता दिखाना। इसकी जिद होती है दल्ला या अदल्ला, खुद भटकना या दूसरों को भटकाना, भलाई की राह को गुम कर देना या ओझल कर देना। तो हिदायत के मुकाबले में दलालत आ जाता है। अब जब आप ये चीज़ देखते हैं, तो आपको फिर इसमें वो चीज़ें समझ में आने लग जाती हैं जो कि हम देखते हैं तीन किस्म, जिसका भी हमने खुलासा किया। आप इसको ज़रा दूसरे लफ्ज़ों में समझ लीजिए। एक फितरी रहनुमाई, जो अल्लाह ने हर चीज़ में डाल दी, बच्चे का पैदा होते ही अपनी माँ से फ़ायदा उठाना, और इसका जिक्र सूरत तौहा की आयत नंबर 50 में है। रब्बुनल्लज़ी आता कुल्ल शयइन खल्क़हु सुम्मा हदा। हमारा परवरदिगार वो है जिसने हर चीज़ को इसकी शक्लो सूरत बख्शी, फिर राह दिखलाई। इसी हिदायत का दूसरा दर्जा क्या है? इंसान के जहन का रुख जलालत यानी दलालत से हिदायत की तरफ या कुफर से इस्लाम की तरफ। और तीसरी फॉर्म है नाफरमानी से अल्लाह ताला की फरमाबरदारी की तरफ मोड़ना। ये काम अंबिया कराम, रसूल और दूसरे नेक लोगों के तरीके से, उनके वास्ते से, उनकी वसातत से होता रहा, मगर इस रुख को मोड़ना सिर्फ अल्लाह के इख्तियार में है। इसकी दलील है कुरान पाक में, इन्नक ला तहदी मन अहबबत वलाकिन अल्लाह यहदी मन यशा। ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप जिसे दोस्त रखते हैं उसे हिदायत नहीं दे सकते, बल्कि अल्लाह ही जिसे चाहता है हिदायत करता है। और इस पे अबू तालिब की मिसाल बहुत सारे लोगों को मालूम है। तीसरी चीज़ जो हिदायत ही के लफ्ज़ के साथ है, वो क्या है कि जो लोग अल्लाह की फरमाबरदारी या इस्लाम में आ जाएं, इन्हें सीधी राह दिखलाना और राहे रास पर चलाते जाना। अव्वल दौर में तो ये जिम्मेदारी अंबिया और रसूल की थी, आज के दौर में इसमें मुसलमान शरीक हो चुके हैं, फिर भी इस काम में अल्लाह की मशीयत होती है। इसकी भी दलील है, अफ अंत तहदिल उमया वलौ कानु ला युबसिरून। क्या तुम अंधों को रास्ता दिखाओगे अगरचे कुछ भी देखते भालते ना हो? और इसी तरह से एक और जगह आता है, वइन्नक लतहदी इला सिरातिम मुस्तकीम। ए नबी, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप तो सीधा रास्ता ही दिखाते हैं। और जब इसको आप इहतदा हिदायत पाने के मानों में लेते हैं, तो फमन इहतदा फइन्नमा यहतदी लिनफ्सी, जो कोई हिदायत हासिल करता है तो अपने ही लिए करता है। चलिए, ये तो सारे खेल थे हिदायत लफ्ज़ के। दूसरा लफ्ज़ देखिएगा, रुश्त, राशदा कहते हैं, रुश्त उसी से है। इसकी जिद होती है गवाह। फिर बोलती हूँ, हिदायत की जिद है जलालत, दलौल, दलल, भटकना, पाँव का फिसलना, जैसे टंग स्लिप ऐसे फुट स्लिप। इसके बरक्स रुश्त जब आता है, तो इसकी जिद होती है गवाह। जो शख्स राह रास्त पर आ जाए और नेक चलन भी इख्तियार कर ले, समझिएगा, आप इसको कह सकते हैं राह हक पे बरकरार रहना। ये बहुत बड़ी बात, और इसका फर्क दौरे कुरान में इंशाल्लाह 8वें पारे में आप देखेंगे कि कैसे सबील और रुश्त बमुकाबला सबील उल हुदा, या हिदायत बमुकाबला गुमराही के। और एक नबी को कौम ने कहा था, अलैसा मिनकुम रजुलुर रशीद, रशीद का लफ्ज़ भी आप कह लें इसी से है। तो खुलासा क्या निकला, हिदायत या इहतदा सीधी राह पर गामजन होना होता है, जबकि रशदा उस राह को इख्तियार करने के बाद नेक आदात भी अपनाना और फिर उस पे बाकी भी रहना। ये वो चीज़ होती है कि जिसके अंदर आप हिदायत को देखते हैं। बहुत सारे लोग ज़िंदगी में हिदायत पे आते हैं और फिर मरते दम तक उसी पे रहते हैं। अल्लाह मुझे और आपको उन्हीं में से कर दे। और अगर उसके बाद अगर आप और मैं इस पे आ चुके हैं, तो अल्लाह हमें जमा भी दे, और जितना इस पे जमते जाएंगे आपको उतना ज़्यादा फ़ायदा होता जाएगा। फिर इसी के बाद आप देखिए कि जितना ज़्यादा आप और मैं इसकी कोशिश करते जाएंगे, उतना हमारा ये अमल बढ़ता जाएगा। इंशाल्लाह हम इस पे बात करेंगे, लेकिन मुझे उम्मीद है कि इस लफ्ज़ी वज़ाहत के साथ आपके जहन में हिदायत का एक कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। लेकिन हम अभी चलेंगे अगले लफ्ज पे, और वो क्या है, इहदिना, दिखा हमको, अस्सिरोता, रास्ता। अल्लाह सुबहान तआला से एक बंदा रास्ता मांगता, और सिरात किसको कहते हैं, सीन रौ त्वा, स्वाद रौता भी है, असल में सीन था, स्वाद मोटी होने की वजह से बदल गई, इसीलिए आप देखेंगे कहीं कहीं लफ्ज सीन रौ त्वा भी दिखता है। आसान रास्ते को सिरात कहते हैं, असल में निगलना, टू स्वॉलो। आप कभी गर्मियों की दोपहर में किसी हाईवे पे तेज गाड़ी चलाकर जाए ना, तो आपको लगता है कि सड़क को गाड़ी निगल रही है, तो निगलने की वजह से रास्ते को सिरात कहते हैं। सिरात का लफ्ज निगलना, कैसे, रास्ते को सिरात क्यों कहते हैं, क्योंकि उस पे चलने वालों को निगल लेता है, इट लुक लाइक, हालांकि वो कर नहीं रहा होता लेकिन फील होने लग जाता है कि वो ऐसा कर रहा है। और इसी तरह से रास्ते के लिए अरबी में बहुत सारे लफ्ज हैं। अभी आपको मैं सिर्फ उनका एक ओवरव्यू दे देती हूँ, और फिर आप देखेंगे कि जब हम अपनी इस दुआ की डिस्क्रिप्शन यानी इसकी तफसील को जानने पे आएंगे तो आप हैरान हो जाएंगे कि यहाँ लफ्ज सिरात क्यों आ गया। और ये आज आप जो थोड़ा बहुत सीख रहे हैं ना, इंशाल्लाह इससे आप देखेंगे कि आपको अपनी नमाजों में सूरत अल फातिहा पढ़ने के दौरान इस दुआ को मांगने में मज़ा आ जाएगा। यानी मुझे उम्मीद है, और मैं अल्लाह से दुआ भी करती हूँ कि अब के बाद जब भी सूरत फातिहा पढ़ें, वो ज़ाहिर है कि अगली नमाज ही होगी ना, और अगली नमाज में जब हम सूरत फातिहा पढ़ते हैं तो ये दुआ जब मांगे तो ये हमारे दिल की पुकार बन जाए। ऐसा ना हो कि हम अपनी मर्जी से अपने तरीके से बातें करते जाएं और हम उससे फ़ायदा ना उठाएं। तो लिखिएगा, बहुत दिलचस्प मालूमात हैं रास्ते के लिए अरबी जुबान में क्या क्या लफ्ज़ हैं, और ये है कुरान का मिजाज। तो रास्ते के लिए अरबी जुबान में सिरात, तरीक, सबील, फज, इमाम, हुदा, नजत, सबब, आठ लफ्ज़ हैं। बताइए आपकी मेरी उर्दू, इंग्लिश और दूसरी जुबानें क्या इतनी एनरिच्ड हैं कि एक ही लफ्ज़ के लिए मुख्तलिफ लफ्ज़ हों, और ये तो भी इसमें आठ हैं, कई जगह तेरह तेरह लफ्ज़ हैं, बीस बीस भी हैं। आइए ज़रा थोड़ा सा फ़र्क नोट करें, ये सिर्फ आपके उस इल्मी ज़ौक की खातिर जो रेगुलर क्लासेज है उसमें लेते हैं। दौरे कुरान में ज़ाहिर कितना वक्त नहीं होता, लेकिन जो सबीलुल जन्नत कोर्सेज हैं तो उसमें ये अंदाज़ हमारा अल्लाह की रहमत से आपको दिखता है कि एक एक लफ्ज़ के ऊपर गौर व फिक्र किया जाता है। तरीक किसको कहते हैं, जमा है इसकी तरायक, हर तरह के रास्ते के लिए, यानी कॉमन वर्ड फॉर दी रास्ता, और मादी और मानवी दोनों सूरतों में इस्तेमाल होता है। मसलन हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने जब असा मारा था तो क्या आया, फद्रिब लहुम तरीकन फिल बहरी यबसा, ए मूसा समंदर पर लाठी मारकर इनके लिए खुश्क रास्ता बनाइए, यानी इसमें वाकई रास्ता बना था, जिसको आप कह सकते हैं रोड, जिसको आप कह सकते हैं ऑन साइट पे कोई चीज दिखे, लेकिन कुछ वर्चुअल चीज़ें होती हैं, वर्बल चीज़ें होती हैं, उसको मानवी कहते हैं। उसके लिए क्या आता है, वला अली यहदियन्नहुम तरीक अनिला तरीक जहन्नम, और ना ही अल्लाह इनको राह दिखाएगा मगर जहन्नम की राह। आप जहन्नम की राह क्या है, बुरे काम, शिर्क, कुफर, तो बात समझ गए होंगे कि आम रास्ते के लिए भी आता है और किसी मानवी यानी जस्ट एग्जेम्पलरी, यहाँ कोई सड़क नहीं है कि जिस पे चलने वाला एंड पे जहन्नम में पहुंच जाए, मुराद बुरे तरीके। इसी तरह लफ्ज सिरात, जो इस वक्त है जरा सा इसके बारे में जानकर खुश होइएगा, सिरात कहते हैं लंबी और तेज धार तलवार को, और वो रास्ता जो जहन्नम को उबूर करने के लिए बनाया जाएगा, इसे आम तौर पर पुल सरात कहा जाता है, और उसकी भी वही सिफत है। अगर आप हदीस पढ़ें पुल सरात के बारे में, तो वो तलवार से तेज होगा, बाल से बारीक होगा, जिसका हम कहते हैं ना कि इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। इस दुआ को महसूस कीजिए और इसको मांगते वक्त अपने दिल की धड़कनों को तेज होता हुआ देखें। हम अल्लाह ताला से जब इस रास्ते की बात करते हैं तो क्या मुराद है, सिरात वो रास्ता है जो इंतहाई एहतियात के साथ तय करना पड़े, बड़े शऊर के साथ, कांपते हुए नपे तुले कदमों के साथ जिस रास्ते से गुजरे उसको सिरात कहते हैं। और सिरात कहते हैं उस रास्ते को जिसके इर्द गिर्द बहुत सारे खतरात हों, और इसी एहतियात जिसके साथ सिरात से गुजरते हैं, इसका नाम तकवा है। आप कह सकते हैं कि सिरात के लफ्ज से समझ आ गया कि तकवे के बगैर इस रास्ते से बंदा गुजर नहीं सकता। और इसी तरह आप देखते हैं, जैसे पुल सिरात की बात है, आप अहादीस में पढ़ेंगे कि कैसे क़यामत के दिन लोग गुजरेंगे, और जन्नत में जाने का और जहन्नम में जाने का एक ही रास्ता है, जहन्नम नीचे है, जन्नत उसके आगे है। पुल सिरात ही से फैसले हो जाएंगे कौन कट के नीचे गिरता और कौन कांपता लुढ़कता फुड़कता या कौन तेज हवाओं की तरह चलता हुआ पहुंच गया। तो लिखिए, वो आखिरत की पुल सिरात है, ये दुनिया का सिरात है। हिदायत का रास्ता आसान नहीं है। हम अल्लाह से ये नहीं कहते कि हमें आसान रास्ता दे, क्योंकि अभी सारे लफ्ज़ सुन लीजिए तो आपको फिर मैं इस सब के ऊपर एक छोटा सा नोट दे दूंगी। अभी सिर्फ आप लफ्ज़ी वजाहत पे फोकस कीजिए। जिस तरह हमने देखा कि तरीक का लफ्ज़ असल रास्ते पे भी आता है और मानवी पे भी आता है, बिल्कुल इसी तरह से सिरात भी मादी रास्ते, यानी जिसको आप वाकई रोड कहें, हाईवे कहें, गली कहें, भाटा कहें, जो भी कहें, उसके लिए भी आता है और मानवी तौर पे भी आता है। मानवी तौर पे जब आएगा तो मफहूम हिदायत का रास्ता होता है। ले लीजिए इसकी मिसालें भी, जैसे इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, अल्लाह में सीधे रास्ते पे चला, ये कौन सा रास्ता है? मानवी है। कोई एक रास्ता तो ऐसा नहीं है जिस पे चलते हुए आप जन्नत में पहुंच जाएं, और आपके कोर्सेज का नाम सबीलुल जन्ना। तो सबीलुल जन्ना का नाम आपको बता देता है कि ये रास्ता एक मानवी रास्ता है ना। और इसी तरह अगर मादी रास्ते, यानी जिसको रोड के मानों में कहेंगे, तो वो क्या है? एक कौम का तस्करा है, वला तक़ुदू बिकुल्ली सिरातिन तुवेदून व तसुद्दून अन सबीलिल्लाह, और हर रास्ते पर मत बैठा करो कि जो शख्स अल्लाह पर ईमान लाता है इसे तुम डराते धमकाते हो और अल्लाह की राह से रोकते हो। तो गोया कि इसमें भी दोनों मानी आ गए। तीसरा लफ्ज़ ले लीजिए सबील, सुबुल से, हर वो रास्ता जिस पर सहूलत से चला जाए। आप कुरान में कसरत से पढ़ते हैं इब्न सबील, सबील का रास्ता, यानी इब्न सबील कहते हैं मुसाफिर को, रास्तों का बेटा। आप देखिए कि आबिर सबील का लफ्ज़ भी आता है सूरत निसा में पढ़ते हैं, इस तरह सूरत बकरा में आता है 177 में, सबील राहगीर को कहते हैं। इसी तरह सुबुल इसकी जमा होती है, और सबील कहते हैं खुली सड़क को। अरब लोग कहते हैं असबलुत तरीक, रास्ते का बहुत आमदोरफ्त वाला होना। हम कहते हैं ना कंजस्टेड है, रश है, ट्रक्ड है, उसके लिए लफ्ज आता है। इसी तरह असबलुद्दमुल वल मतर, आंसू या बारिश का कसरत से बहना और बरसना। तो फिर सबील कौन सा रास्ता है जहां कसरत से आमदोरफ्त होती है? शहद की मक्खी की मिसाल लीजिए, सूरह नहल आयत 69, फसलू की सुबुल रब्बी का जुलूला, और अपने परवरदिगार के साफ रास्तों पर चलती जाओ। तो वहां सुबुल से मुराद फितरी रहनुमाई है जो अल्लाह ने हर चीज के अंदर डाल दी है, यानी मक्खी के अंदर जो अल्लाह ने प्रोग्रामिंग की थी उसकी रोशनी में मक्खी चलती जाती है। कहाँ से फूलों में से रस लेना है, कहाँ से नहीं लेना, तो इसका भी फिर इस्तेमाल मानवी रस्तों पर भी और मादी रस्तों पर भी होता है। मसलन व इन्नहा लसबीलिम मुकीम, कौम लूत की बस्तियों की तरफ इशारा है कि ये तो हाईवे पे थी, बहुत बड़े बड़े रस्तों पर भी थी। तो आप देखिए कि जब अल्लाह सुबहान ताला ने हिदायत के रास्ते के लिए कुरान पाक में अल्फाज इस्तेमाल किए, तो आप देखिए कि इस हिदायत के रास्ते के लिए तरीक, सिरात और सबील तीनों ही रास्ते इस्तेमाल किए। और तरीक इस लिहाज से कि ये आम लफ्ज़ है जो हर रास्ते के लिए होता है, सिरात मुश्किल रास्ता है, अवामिर नवाही डूज एंड डोंट्स की हदूद व कयूद पाबंदियों वाला रास्ता होता है, और सबील उस लिहाज से कि जो शख्स अजम के साथ इस रास्ते पे चल खड़ा होता है ना, तो शरीयत ने उसके लिए हर तरह की आसानियों का लिहाज रखा है। और ऐसे लोगों की भी बहुत तादाद है जो इस रास्ते पे चलते हैं। कौन कुर्बान ना जाए अल्लाह के इस कलाम पे। आप और मैं मांगते हैं इहदिना सिरात अल मुस्तकीम, सीधा रास्ता। ये तो नहीं कहते कि इहदिना सिरात की बजाय सबील कह दीजिए, आसान रास्ता नहीं हम मांगते, हम सिरात मांगते हैं, क्योंकि असल में इसी में खूबसूरती है। अल्लाह ताला चाहते हैं कि हम पुल सरात के ऊपर से गुजरने तक का रास्ता मांगे। फिर इस तरह एक रास्ता था फज, फा जीम जीम, फज्जतुन, दो पहाड़ों के दरमियान कुशादगी को फज्जतुन कहते हैं, और फजवा कहते हैं दो पहाड़ों के दरमियान एक मैदान को। इंग्लिश में कहते हैं वैली, वादी उर्दू में कहते हैं। तो आप कह सकते हैं कि फज्जा वो खुला रास्ता जो इस मैदान में से गुजरकर इन दोनों पहाड़ों को मिलाता है, ठीक है। और इसकी जमा क्या आती है? फिजाज। कुरान पाक में मौजूद है, हज के ज़िमन में सूरत हजी है। वाज़िन फिन नास बिल हज यातू करी जालूं व अला कुल्ली दामिर दामिरी याती न मिन कुल्ली फज्जिन अमीक। और लोगों में हज के लिए निदा कर दो कि तुम्हारी तरफ पैदल और दुबले पतले ऊंटों पर जो दूर दराज रास्तों से चले आते हों सवार होकर चले आए। तो गोया कि आप देखिए कि फज का लफ्ज एक मखसूस किस्म के रास्ते के लिए आता है। पांचवा लफ्ज है इमाम, और इमाम का लफ्ज क्या है? पेशवा। और यहां मुराद है शाहरा, हाईवेज, बड़ी और खुली सड़क को इमाम कहते हैं। कुरान कहता है फन तकमना मिनहुम व इन्नहुमा लबी इमाम मुबीन, बस हमने इनसे बदला ले लिया और वो दोनों बस्तियां बड़ी शाहराह पर वाक़ हैं। यानी अगर हम कहते ना कि एहदिना इमाम अल मुस्तकीम, तो पता क्या मानी बनता? अल्लाह बस बड़ी बड़ी नेकियों के काम दे दे, छोटी नहीं करनी हमने। हालांकि बात इससे बिल्कुल अपोजिट है। फिर इसी तरह से आप सारी चीज़ों को जब देखते हैं तो आपको अंदाजा हो जाता है कि अल्लाह सुबहान तआला किस तरह मुनासिब और ज़रूरत के मुताबिक जो अल्फाज हैं वही इस्तेमाल करते हैं कुरान पाक में। अगला लफ्ज़ लीजिए नजत। नजत बोले इसको आप, घाटी को कहते हैं। वो रास्ता जो ऊपर बुलंदी की तरफ चढ़ता है और ऊपर से नीचे आता है, हमारी जुबान में इसको पहाड़ी रास्ता कहते हैं। वहदैनाहुन नजदैन फलक्तहमल अकबा, और इंसान को दोनों रास्ते दिखा दिए गए मगर वो घाटी पर से होकर ना गुजरा। तो क्या पता चला? अल्लाह ताला ने नजद का लफ्ज भी कहा। फिर मजे की बात देखिए कि एहदीनस सिरात में तो हम हुदन देख चुके हैं, अब यहां आपको एक बड़ा खूबसूरत नया नुक्ता दिखेगा। हुदन भी रास्ते को कहते हैं। सिरात तो रास्ते को कहते ही हैं, हुदन जिसकी जिद दलालत है, रहनुमाई और राह को कहते हैं। ये कौन सा होता है? अगर किसी भूले भटके इंसान को सही राह मिल जाए तो इसे हुदन कहते हैं। इन्नी आनस्तु नारन, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के बारे में आता है सूरह तौहा आयत 10 में, इन्नी आनस्तु नारन लअल्ली आतीकुम मिन्हा बिक़बसिन अव अजिदु अलन नारी हुदा, मैंने आग देखी है, मैं वहां जाता हूं, शायद इसमें से तुम्हारे लिए अंगारा ले आऊं या उस आग के मुकाम पर बैठे लोगों से राह मालूम कर सकूं। तो गोया के हुदन सिर्फ मानवी रास्ता है इधर, ये भी नोट कीजिए। अगला लफ्ज है सबब, जिसकी जमा है असबाब, जरिए को कहते हैं। आप कहते हैं ना सबब बन गया, आप आगे मुझे ले गए, सबब बन गया मेरा। रस्सी को कहते हैं, और रास्ता, रास्ता और उसे तय करने के वसाइल, जिसको आप सामान्य सफर कह सकते हैं। और ये कितनी दफा इस्तेमाल हुआ है सूरत अलकहफ में, सुम्मा अतबा सबबा, फिर ज़ुल्क़रनैन ने एक और सामान सफर का किया। और इसी तरह वकाल फिरौन या हामान, और फिरौन ने कहा ए हामान मेरे लिए एक महल तामीर करो ताकि मैं इस पर चढ़कर रास्तों पर पहुंच जाऊं। या हामान उबनी ली सरहल अली अबलुगुल असबाब, अब मुझे बताइए जरा क्या रास्ते की बात समझ आ गई? कैसे अल्लाह सुबहाना ताला ने आपके मेरे लिए कुरान के अंदर ये सारी चीजें खोल के रखी ताकि हम इन चीजों पे गौर व फिक्र करें और इसके बारे में जानें कि अल्लाह सुबहाना ताला किस खूबसूरत अंदाज से कुरान पाक में हमें सिखाते हैं इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। तो खुलासा क्या निकला इतनी लंबी बात का कि अल्लाह ताला ने हमें इहदिनस सिरातल मुस्तकीम कहकर ये सिखा दिया कि हर तरह का मुश्किल हो के आसान हो हमें वो रास्ता चाहिए। यहाँ तरीक नहीं आया, इमाम नहीं आया, नजद नहीं आया, सबील नहीं आया, फज नहीं आया, सबब नहीं आया, क्योंकि कुरान किताब हिदायत है। और ऐसी सारी चीज़ों से अपने लिए ये चीज़ भी नोट किया करें कि हिदायत की किताब है, इसीलिए तो इतनी बारीकी है। अगर ये सिर्फ पढ़ने पढ़ाने की किताब होती तो फिर तो कोई मसला ही नहीं था। तो अगर हम सिर्फ इसको पढ़ते ही जाएं, बरकत तो मिलेगी, रहमत तो मिलेगी, लेकिन हमने इस साल इंशाल्लाह कुरान को किताबे हिदायत बनाना है। पढ़ेंगे भी सही तरह से, लेकिन फिर इसके ऊपर गौर व फिक्र भी करना है। तो रास्ते के लफ्ज के बाद अगला लफ्ज देखिए हमारी दुआ में, अल मुस्तकीम। 37 टाइम ये वर्ड कुरान पाक में आता है। बाप इस्तेफाल है, काफ वाव मीम से, कौम, क्याम, क्यामत, वही है। इसके मानी होते हैं खते मुस्तकीम की तरह सीधा होना, और तशबीह के तौर पर यह राहे हक को वाजह करता है। तो इहदिनस सिरातल मुस्तकीम में जो लफ्ज हैं वो क्या हैं कि अल्लाह हमें इस्तकामत के साथ सीधे रास्ते पे चलता रहने दे, और फिर साबित कदम भी रखना। अब सवाल पैदा होता है कि जब अब सीधे रास्ते और इस्तकामत की बात करते हैं तो क्या इसके लिए कुरान पाक में कोई और भी लफ्ज़ है? तो बिल्कुल है। आज उसकी वजाहत नहीं देती क्योंकि टू मच हो जाएगा आपके लिए। इंशाल्लाह चलते जाएंगे, ये सफ़र तो तय होगा। तो आप देखिए कि मुस्तकीम का लफ्ज़ काफ वाव मीम से है। वज़िनु बिल क़िस्तासिल मुस्तकीम, जब तोलो तो सीधी तराजू के साथ तोलो। फिर इसी तरह से फतमस्सला लहा बशरन सवीया, हमने उनकी तरफ अपना फरिश्ता भेजा तो उनके सामने ठीक आदमी की शक्ल का बन गया। और इसी तरह से फत्तबेनी अहदिका सिरातन सवीया, तू मेरे साथ हो जैसे मैं आपको सीधी राह पर चलाऊं। इसी तरह लफ्ज सवा सीन वाव या से है, सवा सवीयुन, ये भी इसी के लिए आता है, सीधे रहने के लिए। खुजूहु फातिलूहु इला सवाइल जहीम, हुक्म दिया जाएगा इसको पकड़ो और खींचते हुए दोजख के बीचों बीच ले जाओ। और हजरत मूसा ही के तस्करे में आता है सूरह कसस में, वलम्मा तवज्जह तिल्का मदयन काल असा रब्बी यहदियनी सवा सबील, और जब मदियन की तरफ रुख किया तो कहने लगे उम्मीद है कि मेरा परवरदिगार मुझे सीधा रास्ता बताएगा। इसी तरह कस्द, सीधे के लिए लफ्ज कस्द भी आता है, वाल्लाही कस्दुस सबील व मिन्हा जायर, और सीधा रास्ता तो अल्लाह ताला तक पहुंचता है और बाज रास्ते टेढ़े हैं, वो इस तक नहीं पहुंचते। इसी तरह सद्दा, सदीद के लफ्ज में भी है ये सीन दाल दाल, अल्लाह ताला ने इसका भी तस्करा किया, वल यकूलु कौलन सदीदा, सीधी बात करो अल्लाह से डरो, तो सीधे के लिए ये लफ्ज आया। चलिए जरा सा इसको जज्ब कीजिए अब इसी पे रुक कर। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, छोटी सी दुआ, बिल्कुल आप कह लीजिए कि तीन लफ्जों की दुआ, और जुबानी बच्चों को भी याद है, लेकिन हकीकत यह है कि ये दुआ आपको मुझे क्या सिखाती है। अल्लाह सुबहाना तला आपको मुझे इसमें जो बात सिखा रहे हैं वो क्या है कि तुम अल्लाह से मांगने की चीजों में से बेहतरीन चीज मांग लो, और वो बेहतरीन चीज हिदायत है। अब आप लिखिए चंद जुमले और चंद पैराग्राफ और चंद पेजेस बन जाएं, जो लिख सकते हैं इस पे लिख लें, नहीं लिख सकते तो दिलों पे रखिएगा कि आखिर हम ये दुआ क्यों मांगते हैं। तो एक जुमला, आम दर्जे की जन्नत मांगने की बजाय आला तरीन दर्जे की जन्नत मांगना सिखाया। अब इस पे बस रुक के तो लिखिए, अपने आप को सामने रखते हैं इस वक्त, अब सबको भूल जाइए, क्योंकि जब हिदायत और दूसरी चीजों की बात आती है तो हमें दूसरे अपने से ज्यादा याद आते हैं। फुलां ऐसा, फुलां वैसा, फुलां ने ये किया, फुलां वो करता है, फुलां का मामला ऐसा, तो हम सब इहदिनस सिरातल मुस्तकीम की दुआ करते हैं। जब हम ये दुआ करते हैं तो आखिर हम अल्लाह से क्या मांगते हैं? तो हम अपने रब से मांगते हैं कि अल्लाह हमें छोटी सी नहीं बड़ी सी जन्नत चाहिए, आम दर्जे की नहीं खास दर्जे की जन्नत चाहिए। जितना ज्यादा आप तड़प और तलब के साथ कोशिश करेंगे उतना अल्लाह ताला आपको बेहतरीन तरीके की रहनुमाई अता फरमाएगा। छोटी चीज मांगते हैं, अल्लाह उनको बड़ी चीज देना चाहता है। कुछ लोग बड़ी पे होते हैं लेकिन उनको फिर भी छोटी चीज चाहिए होती है। मैं आपसे एक सवाल करती हूं, आप खुद से कीजिए। जब आप लफ्ज हिदायत ذہن میں لاتے ہیں تو آپ کے ذہن میں کیا تصور آتا ہے؟ ہر ایک سوچ لے، کیونکہ اس وقت ہم پوچھنے کے موڈ میں نہیں ہیں، ورنہ میں ضرور پوچھوں آپ لوگوں سے، لیکن اپنے ذہن میں لفظ ہدایت لائیے۔ جیسے میں نے اور بھی لوگوں سے سنا اور پوچھا تو لفظ ہدایت کے ساتھ کچھ لوگ کہتے ہیں روشنی آتی ہے۔ لکھیے، خود سے سوال کیجئے کہ جب میں لفظ ہدایت بولتی ہوں تو میرے ذہن میں کیا آتا ہے؟ کوئی کہتا ہے چراغ آتا ہے، کوئی کہتا ہے روشنی آتی ہے، کوئی کہتا ہے سیدھی ایک لائن دکھتی ہے، کوئی کہتا ہے کہ میرے ذہن میں بلب آتا ہے 0 واٹ کا اور اس سے بڑا۔ سب کچھ اپنی جگہ پہ رکھتے ہوئے آپ اس ہدایت کو سوچتے جائیں۔ کوئی کہتا ہے مشکلات آتی ہیں، کوئی کہتا ہے قربانیاں دینی آتی ہیں، کوئی کہتا ہے بس مجھے تو ایسے لگتا ہے اس کے بعد زندگی میں کوئی خوشی نہیں رہ جانی، بس ہر وقت مصلی، نماز، روزہ اور مسجد، ٹوپی۔ لیکن بات یہ ہے، اگر آج میں آپ کو جو انالوجی دینے لگی ہوں، آپ کو میں سمجھا پائی، تو میں اللہ کا لاکھ شکر ادا کروں گی، اور نہ بھی سمجھا پائی تو بھی شکر ادا کروں گی اس بات پہ کہ اللہ نے مجھے توفیق تو دی موقع کی۔ میں نے جتنا بھی قرآن کو پڑھا اور سمجھا اور سیکھا، مجھے ہدایت کے تصور کے ساتھ ایک سیڑھی دکھتی ہے۔ سیڑھی کا تصور ذہن میں لے کے آتے ہیں نا، تو مجھے ایسے لگتا ہے کہ ہدایت کیا ہے؟ لکھیے شاباش اور محسوس کیجئے، ایک کے بعد ایک سٹیپ پر چڑھتے جانا۔ آپ کے سامنے بھی ایک سیڑھی ہے اور آپ اپنے آپ کو سیڑھی پہ چڑھنے والوں میں محسوس کیجئے۔ یہ ہدایت کا نسخہ کیا ہے جس کے لیے ہم نے اپنے دلوں کو تیار کرنا ہے، اور اس سال جو دلوں پہ کام کرنا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ہدایت کی سیڑھی پہ چڑھ سکیں۔ آپ دیکھیے کہ زندگی میں ہدایت پانے کے لیے آپ کو ایک سے ایک مرحلہ طے کرنا پڑتا ہے۔ سیڑھی پہ چڑھنا، یہ جو امیج ہے، بس اس کو اپنی نظروں میں سما لیجئے۔ ایک شخص کھڑا ہے جس کا ہاتھ بھی نہیں جا رہا تو سٹیپ اتنا اونچا ہے، اور وہ بیچارہ یہی کہہ رہا ہے مجھ سے نہیں ہوتا، میں کیسے کروں، میرے لیے بڑا مشکل ہے، یہ امپاسبل ہے، یہ میرے لیے ناممکن بات ہے، یہ کیسے اور یہ میں کیوں کر پاؤں گا۔ اس کے برعکس آپ سائڈ پہ جو دوسری طرف دیکھ رہے ہیں شخص، وہ کون ہے؟ یہ وہ شخص ہے کہ جس نے کوشش کی۔ اس نے یہ نہیں کہا کہ میں کوئی بہت بڑی نیکی کروں گا، کوئی بہت بڑا کام کر کے ہدایت پاؤں گا۔ جیسے کچھ لوگ یہاں نماز بھی نہیں پڑھتے اور خانہ کعبہ میں جا کے نماز پڑھنے کے لیے روتے ہیں، یہاں سنتوں کو پاؤں کے نیچے رونتے ہیں اور روزے کی جالیوں کو چومنے کا شوق ہے۔ آپ اس امیج کو دیکھ کر کیا سمجھے، کامیاب کون ہے؟ بڑے بڑے کاموں کے نام پر کچھ نہ کر کے صرف ہاتھ کھڑے کر کے ہینڈز اپ کرنے والا، یہ نیچے ہینڈز اپ ہے، اور یہ بہت بڑا شیطان کا دھوکہ ہوتا ہے۔ کوئی بڑی نیکی کرنی ہے اس لیے چھوٹی نہیں کرنی، میں تو جی جب کوئی نیکی کروں گا تو بڑی کروں گا، اور ابھی میں خود نہیں کر سکتا تو میں دوسروں کو کیسے کہہ دوں؟ ایسا نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو مجھے اس بات کی توفیق دی ہے کہ ہم اپنے آپ کو سنواریں۔ کیا کریں؟ نیکسٹ پہ چلیے، ایک اور آپ کو دکھاتے ہیں۔ آپ دیکھیے کہ اسلام میں ہدایت کا کانسیکوینسز کے ساتھ اور اس کے تسلسل کو اگر آپ سامنے رکھتے ہوئے دیکھیں، تو جو امیج میرے ذہن میں آیا اس کو بنانے کی ایک ہلکی سی کوشش آپ کے سامنے کی گئی ہے کہ ہم ہدایت کیسے مانگیں، کیونکہ اہدنا الصراط المستقیم ہے نا، ابھی تو ہم ذات پہ بات کریں گے نا، اور قرآن کے نور میں ہدایت دیکھنی ہے۔ کچھ لوگ ہیں جن کی زندگی میں یہ نور نہیں ہوتا، اور کل تک ہمارے بھی نہیں تھا بالفرض، میدان میں کھڑے تھے اور خود کو ہدایت یافتہ سمجھتے تھے، چلو میں دوسروں سے تو اچھی ہوں، ہے کسی لوگوں کا یہ امیج، کیا ہوا دوسروں سے تو میں بہت اچھی ہوں نا۔ اب وہ اندھیروں میں کھڑے تھے، خود کو بڑے ہدایت والے سمجھتے، اتنے میں کسی نے قرآن کا ٹارچ کھول دیا، یا ایھا الناس، اے لوگو، یہ ہے وہ کتاب جو تمہیں پکارتی ہے، یا ایھا الذین آمنو۔ جب قرآن کا نور زندگی میں کھلا تو پتا چلا کہ ہم تو ہدایت یافتہ نہیں ہیں، تب کہتے تو کیا ہوا، گلے میں تو لیتے ہیں، وہ کیا ہوا، بازو تو پورے ہی تھے نا، کیا ہوا، قمیض پہنی تو ہوئی تھی۔ یعنی جب قرآن کا نور زندگی میں نہیں تھا، آپ کو میں سب کو دعوت دوں گی، میں اپنے سمیت، اپنی زندگی کا کوئی ایسا وقت، کوئی لمحہ یاد کیجیے جب ہدایت سے دور تھے۔ کہیں نہ کہیں پارشل ہدایت تو ہر ایک کی گزرتی ہے، اور کچھ تو مطلق ہدایت میں تھے۔ چلو تم ادھر ہوا ہو جدھر، جیسا دیس ویسا بھیس، جو ہم کر سکتے ہیں ہم تو وہی کریں گے۔ اور اس کے برعکس آپ دیکھیے کہ دوسرا ایک وقت कुछ ऐसा भी होता है कि हर दौर में एक इंसान अपने आप को हिदायत वाला ही समझ रहा होता है। वो कहता है मैं बड़ी हिदायत पे हूं, या कोई कहता है मुझे जरूरत नहीं। आज यहां बैठकर खुद को जरा उधर पीछे ले जाइए कि जब हिदायत नहीं थी, अगर उसी पे मौत आ जाती, अगर उसी में दुनिया से चले जाते और कब्र में जाके 3 सवालों का जवाब भी ना था। और याद रखिए, बड़े से बड़ा बेहिदायता खुद को हिदायत याफ्ता समझता है, क्योंकि अंधेरा है, अंधेरे में रोशनी और सांप का फर्क नहीं मालूम होता। याद रखिएगा, अंधेरे में हिदायत और रोशनी का फर्क नहीं पता चलता। इसी तरह कुरान की रोशनी से बगैर हमारी जिंदगी में अंधेरे और रोशनी का फर्क नहीं पता होता। आप जब अंधेरों में होंगे, खतरों में होंगे। आज बहुत सारे लोग कहते हैं ना पढ़ो, ना सुनो, ना अमल करो, बैठकर कुछ और कर लो। हर साल रमजान में 10 रातें जाग लो, एक उम्रा कर लो, एक हज कर लो, बड़ी अच्छी बात है, इसमें कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन मुतलकन इस पे जमना ये दुरुस्त नहीं है। करना क्या है, सबसे पहले आप सवाल लिखिए, मैं हिदायत पे आना चाहती हूँ। और मैं इस वक्त बिल्कुल एक ऐसी सिस्टर अपने तसव्वुर में जिसके स्लीवलेस पहने हुए, टखने भी खुले और बिल्कुल कांप रही है। क्योंकि मसला पता क्या है कि जब लोग दीन से और हिदायत से भी जरा सा दूर होते हैं ना, तो हम सोच रहे होते हैं कि ये तो पता नहीं कौन है। नहीं, प्यार कीजिए, मेरी ये बात सिर्फ उनके लिए है जिन्होंने अभी इसको टेस्ट भी नहीं किया। फिर क्या हुआ, आप फिल्में देखती हैं तो क्या हुआ, आप गाने सुनती हैं तो क्या हुआ, आप मॉडलिंग करती हैं तो क्या हुआ, आप तो इससे भी बड़ी हुई हैं तो क्या हुआ, आपसे कुछ कबायर सरजद हो गए फिर क्या हुआ, आपने अल्लाह की हदें कई दफा तोड़ी फिर क्या हुआ, इसलिए क्या अंधेरे में रोशनी है कोई नहीं, पता कोई भी नहीं है। आप कहते हैं मैं कहां से शुरू करूं, फ्रॉम वेयर शुड आई स्टार्ट, मैं कहां से शुरू करूं, तो उसका जवाब है सबसे पहले फ़र्ज़। हिदायत का पहला स्टेप, उस सीढ़ी के पहले फेज पे अगर आप आते हैं तो आपको उसके लिए आपको फ़र्ज़ पूरे करने होंगे। सिर्फ फर्ज तो पढ़िए, चलिए आपको ईशा की नमाज बड़ी लंबी लगती है, फर्ज तो पढ़िए। फजर में उठना मुश्किल लग रहा है ना, चले फर्ज तो पढ़िए। आपको जोहर में बड़े काम हैं, आप तो जॉब पे हैं, इधर उधर हैं, बिजनेस में हैं, फलां, फर्ज तो पढ़िए। आप स्कूल कॉलेजेस में हैं, फर्ज तो पढ़िए। 10 चीजों को जहन में लाकर रखिए, एक एक चीज को अपनी जिंदगी में लेकर आएंगे तो आप इस चीज को समझ सकेंगे। और वो क्या है कि फराइज, आपने जिसको भी हिदायत का रास्ता दिखाना है अपने घरों में, अपनी फैमिली में, उसको पहले फराइज की आदत तो डालिए। और इसमें आपको मैं हिकमत भी देना चाहती हूँ तबलीग की। बच्चे वो कहते हैं हम नहीं पढ़ते नमाज, बड़ी मुश्किल है, बड़ी लंबी नमाज है। चलो बेटा फर्ज तो पढ़ो। आपके शौहर नमाज नहीं पढ़ते और 10 चीजें और भी हैं, सिगरेट पीने के ऊपर मत जाइए खुदा के लिए, हम लोगों के सिगरेट छुड़ाने लग जाते हैं, वो भी नमाज भी नहीं पढ़ते। इसके अंदर जिंदगी में एक असूल बना लीजिए, फर्स्ट कम फर्स्ट, द लीस्ट मिनिमम, द बेयर मिनिमम हिदायत जो हर एक इंसान का हक है, वो क्या है कि फर्ज तो पूरे करें। आप रोजा तो रखिए, आप जकात तो दीजिए, आपको जो अल्लाह ताला ने जिम्मेदारियां दी हैं आप उन जिम्मेदारियों से फायदा तो उठाइए, और इसके साथ साथ आप अपने उस एक एक मामले को बेहतर से बेहतर करते जाएं। फराइज में आपकी नमाजें हैं, आपके रोजे हैं, हज नहीं किया, हज है, जकात है, ये तो आपके पर्सनल फराइज है ना। फिर मामलात हैं, माँ बाप का ख्याल कीजिए, वो आपका रास्ता देख रहे हैं, उनका दिल तोड़ा हुआ है, उनके आंसू पोंछिए। आपकी वजह से अगर उनकी आंखों में आंसू है तो जब तक आंसू पोंछ नहीं लेंगे आपको चैन नहीं आएगा। आप शौहर हैं, बीवी के साथ मुखलिस नहीं थे, पहले अपना फर्ज अदा कीजिए एक शौहर होने के नाते। आप एक बीवी हैं, बीवी होने के नाते आप अपने शौहर के हकूक अदा कीजिए, माफी मांगिए, आपने उनका खास हक नहीं दिया, वो हक दीजिए। हर वो चीज जो अल्लाह और बंदों के मामलात में अल्लाह ने हमारे लिए रखी है, आप पहले उसको पूरा कीजिए, फराइज, दैट इज द लीस्ट मिनिमम। और फराइज जब अदा करता है ना इंसान, तो पीछे वो जो अकीदे की बातें हैं ना, जो सबसे पहली चीजें हैं, आपके दिल में ये जो हिदायत का जाग गया है ना, बीज, एक जोश आ गया ना, आपके अंदर एक तड़प आ गई है कि मैंने अपने आप को बदलना है, तो लिखिए एक जुमला। हिदायत का सफर, सीढ़ी का सफर इस तरह बनता है कि कुछ छोड़िए, कुछ कुछ अपनाइए। आप एक स्टेप पे पांव रखते हैं, फिर आप दूसरे पे आ जाते हैं, फिर दूसरा छोड़ेंगे तो तीसरे पे आएंगे ना। तो आपका जहन इस वक्त हिदायत की तलब कर रहा है, यही बात समझ आती है कि आप अल्लाह को मान गए। ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह, ये आपका पक्का होगा तभी हिदायत आएगी। और जब आपके जहन में हिदायत का तसव्वुर आए तो चिराग नहीं, रोशनी नहीं, एक सीढ़ी को रख लीजिए, फराइज पे आइए।